कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे।
कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे।
जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे।
जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे।
कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे।
ओम शांति। अभी योग के बाद बाबा की एक खास श्रीमत जो याद आ जाती है कि कर्म यानी कथनी करनी और रहनी एक समान हो तो बाबा के बच्चों की प्रत्यक्षता होगी और बच्चे फिर बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। ऐसी ही विशेष पर्सनैलिटी बाबा के अनमोल रतन हमारे बीच आज उपस्थित हैं, आदरणीय पुष्पा दीदी पांडव भवन करोल बाग से। आप सभी कैसे अभिनंदन करेंगे नवरंगपुर ओडिशा के दीदी, ये भट्टी के भाई बहन हैं और लगभग 36 बहनें साथ में आई हैं और उनके सभी के सेंटर्स के कुछ कुछ जिज्ञासु हैं, सभी भाई बहन हैं। तो आप सभी का भाग्य है कि इतने दूर से इस बड़े संगम में, इस कुंभ के मेले में जहाँ गंगा सागर का मेला लगता है, वही सब विशेष ज्ञान गंगाओं से भी मिलना हो जाता है। नहीं तो आपको दिल्ली आना पड़े या दीदी को ओडिशा जाना पड़े आपसे मिलने के लिए। तो ये इस महाकुंभ की, इस बाबा के घर की विशेषता है। आदरणीय दीदी जी, अपनी अल्प आयु में, अपने बचपन में ही 8 वर्ष की आयु में 1963 में बाबा मम्मा से मिले, पहले ज्ञान प्राप्त हुआ पूरे परिवार सहित और बाबा मम्मा से भी आप 1963 में दिल्ली में ही मिले। तब बाबा दिल्ली अक्सर जाया करते थे तो वहाँ दिल्ली में आपका मिलन साकार बाबा और मम्मा से हुआ और फिर तभी से ज्ञान का तीर लगा, ज्ञान समझ में आया तो ज्ञान समझाने लगे। आपने दिल्ली में ही अपनी लौकिक पढ़ाई एमए बीएड पूरी की, उसके बाद आप सेवा में समर्पित हो गए। उससे पहले भी सभी दादियों के सानिध्य से सेवा की प्रेरणाएं आपको मिलती रही। आप जूरिस्ट विंग के चेयरपर्सन हैं और इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी विशेष बात जो हमें बचपन से प्रभावित कर रही है, आदरणीय दीदी की बहुत स्पष्ट मधुर भाषी और बहुत रसीली मुरली। जब जब आपसे मुरली सुनते हैं ऐसे लगता है अंदर छप जाती है, बहुत याद रहती है सिर्फ सुनने मात्र से, वरना सुनने के बाद फिर पढ़ना पड़ता है। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है आपसे मुरली सुन के। उस दिन ज्ञान सरोवर में भी सुनने का मौका मिला, नीचे शांतिवन कॉन्फ्रेंस हॉल में भी सुनने का मौका मिला। तो जब ऐसा मौका मिलता है कभी मिस नहीं करते। तो आदरणीय दीदी जी, तब से आज तक दिल्ली करोल बाग पांडव भवन में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, आपके साथ 17 सेवा केंद्र, बहुत सारी साथी बहनें, लगभग 250 बीके पाठशालाएं जिन जिनका आप संचालन करती हैं, और उस कुशल संचालन के साथ साथ इसके मधुबन बाबा के घर में विशेष सेवा करने का बाबा ने आपको सौभाग्य दिया। और बाबा ने ये सेवा दी है कि बहुत बहुत दिन आप यहाँ रहकर टीचर्स की भट्टियाँ, सब भाई बहनों की भट्टी और विशेष कॉन्फ्रेंस में क्लासेस, ये सब कराने का भी बाबा आपको विशेष चांस देता है, जिससे बाकी सब भाई बहन भी लाभान्वित होते हैं। आज हम आदरणीय दीदी जी से सुनेंगे किस तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में ब्राह्मण जीवन दिखाई दे। ओम शांति। अभी एक बहन नीचे संतोष दीदी के स्वागत के लिए चलेंगी 11:30 बजे, याद रखना नवरंगपुर की। अभी अभी की हुई गलती से सीखा हमने।
ओम शांति, ओम शांति। आज का विषय तो बहुत इम्पोर्टेंट है, और हम सब ब्राह्मणों का यही ही प्रैक्टिकल स्वरूप है, क्योंकि हम सिर्फ कथते नहीं लेकिन करते हैं, राइट? ऐसा ही ना, या करना तो क्या होगा, मुश्किल है, कहना तो है ही, बाबा ने सिखाया ही है, लेकिन बाबा ने लक्ष्य ही हमें ऐसा दिया है जिसके लिए बाबा कहते हैं आपको ऐसा बनना है, श्री लक्ष्मी और नारायण जैसा बनना है। यही सबसे बड़ा फर्क है कि यहां हमको बाबा आते ही लक्ष्य दे देता है, तो हम वैसा बनने का पुरुषार्थ करते हैं। तो बनना माना ही करना ना, बनेंगे कैसे जब वैसा करेंगे, चलेंगे, सोचेंगे, सब कुछ हमारा वैसा होगा, बोलेंगे। तो यही ही बाबा हमारी जीवन को इसलिए इतना ऊंचा सहज बनाता है कि बच्चे भक्ति मार्ग में तो आप सिर्फ कथनी करते आए, करनी नहीं हो पाई थी, और वो भी इसलिए नहीं हो पाई, एक तो जो कथते थे वही नहीं पता था वो ठीक है या नहीं, उसकी समझ नहीं थी, जो कुछ भी बोला, कहा, सुना, पढ़ा, सत्संग किए, मंत्र जपे, उनका अर्थ ही मालूम नहीं था, और वो ठीक भी कथा या नहीं ठीक कथा। अब एक ही बात को हम ले, कहते रहे भगवान सर्वव्यापी है, बाबा कहते मैंने कब कहा मैं सर्वव्यापी हूं, एक बार मुरली में बाबा के यही आया था, मैंने तो कहा ही नहीं, तो तुमने ये कहां से कहना शुरू कर दिया, फिर बुद्धि भी वैसी हो गई, बिखर गई, कैसे टिक पाएगी, नहीं टिक पाएगी। फिर जो सोचते थे अच्छी बात भी, गाई मैं मूरख खलकामी पाप हरो देवा, वो भी कर नहीं पाए, भगवान के आगे वादा किया, फिर घर आते ही वही काम, क्रोध, लोभ, लड़ाई झगड़ा, क्यों? उसका भी कारण था, क्योंकि आत्मा इतनी कमजोर बन गई, उसमें शक्ति ही नहीं वायदा करने के बाद उसको निभा सके, क्योंकि शक्ति देने वाला कौन है यही नहीं पता, कहाँ से मिलेगी। अब यहाँ सारा सेटअप तैयार हो और मेन पावर हाउस से कनेक्शन ना जुड़ा हुआ हो तो ये सारी चीजें काम में आएंगी, नहीं आएंगी। अब हमारा ये ब्राह्मण जीवन सबसे विशेष है, सबसे न्यारा है, सबसे ऊंचा है, कि हमारी जो कथनी है वैसी ही करनी है, वैसी ही करनी है। फिर जैसी मनुष्य की करनी होती है ना, वैसी ऑटोमेटिकली उसकी रहनी हो जाती है, उसका लाइफस्टाइल वही बन जाता है, रहना, सोचना, खाना पीना, पहनना, व्यवहार में आना, ये रहनी हो गई ना, जीवन प्रैक्टिकल बिताना। तो बाबा ने देखो हमें सबसे पहले जीवन की मूल बात कही, क्योंकि स्वयं भगवान ने कही और हमने भी वही कहना सीखा, और सिर्फ कहना ही नहीं, क्योंकि भगवान ने इसीलिए कही कि बच्चे मैं आपका जीवन ऐसा बनाने आया हूं, और वो सबसे पहली बात कही पवित्र बनो, योगी बनो, सबसे पहला डायरेक्शन। यहां तक कि बाबा ने कहा ऑर्डिनेंस है ये मेरा, कि क्योंकि बाबा भगवान जानता है कि पवित्रता के बिना सुख और शांति नहीं आएगी, ये श्री लक्ष्मी और नारायण कैसे बन सकेंगे, इनके जीवन में कैसे इतनी महानता आएगी, इनकी करनी ऊंची कैसे हो सकेगी, क्योंकि उसका बेस तो पवित्रता ही है। तो हमने अपने जीवन में पवित्रता की धारणा अच्छी तरह पक्की तरह अपना ली, और इतनी ऊंची पवित्रता कि वृत्ति में भी कहीं कुछ जरा भी अपवित्र भाव नहीं आए, मनसा वाचा कर्मणा पूर्ण रीति से हमारा जीवन पवित्रता की धारणा में चलता रहे। और इसी धारणा के कारण से कितनों ने सहन किया, बहुत सहन किया। यज्ञ का इतिहास ही आप देखो सारा आरंभ में, आजकल तो नहीं सहन करना पड़ता इतना, सहन तो करना पड़ता और बहुत बातें हैं, इसके लिए तो आजाद है, फर्क पड़ गया ना समाज की दौर में, समय के अंतर में, और उस समय की आप कहानियां सुनो, कई ऐसी घटनाएं घटी, आप सब सुनते ही रहते हैं यज्ञ का इतिहास, उसे तो अभी सुनाने नहीं बैठेंगे, लेकिन ये तो जानते ही हो कि जब इस संस्था की स्थापना हुई और 14 वर्ष भट्ठी चली, कन्याएं माताएं आकर समर्पित होती गईं, कुछ परिवार भी समर्पित हुए, स्वयं ब्रह्मा बाबा ने स्वयं को समर्पित किया और संपूर्णता के लक्ष्य को रख करके इन सारी धारणाओं को जीवन में सबके सामने मिसाल कायम किया, और इसी पर ही कितने बहनों माताओं को सितम आए और उन्होंने सहन किया, कोर्ट तक भी आवाज चला गया, मम्मा को जाना पड़ा सफाई देने के लिए। तो कई लोग बाबा को आके कहते थे, जो बाबा के बहुत लौकिक जीवन में बाबा को बहुत संपर्क में समीप में थे, तो वो आके कहते थे बाबा आप ना सारी बातें अच्छी हैं, आप ना सिर्फ इस बात को थोड़ा सा नहीं सख्ती से लो, ढीला कर दो, पवित्रता पर ही तो सारे झगड़े हैं ना, ये थोड़ा सा वो हो जाए ना, तो कुछ भी सत्संग सुनना तो बड़ा अच्छा है, योग करना तो बड़ा अच्छा है, लेकिन क्या ब्रह्मा बाबा ने इस बात को स्वीकार किया? या कोई भी हालात में कितना नाम खराब किया लोगों ने, कितना डिफेम करते गए, पर बाबा ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि ये ईश्वरीय मत है, आज्ञा है, पवित्रता की धारणा ही फाउंडेशन है हमारे इस ब्राह्मण जीवन का। तो जो कथा वो किया, खुद भी किया औरों से भी कराया, इसके ऊपर कितनी सारी हमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बातें कहें, इतिहास कहें, कि देखते तो दुनिया में भी है बहुत सन्यासी महात्मा, कितना ऊंचा बिचारे वो भी जीवन का त्याग करके चलते हैं, लेकिन वो खुद अब आकर कहते हैं कि जो पवित्रता की शक्ति ब्रह्मा कुमारी जीवन में है वो और कहीं नहीं है, ऐसे वो खुद आकर के कह के जाते हैं। तो करनी हुई ना जीवन में वैसी, फिर बाबा पढ़ाई ही ऐसी पढ़ाता है जो हमारा जीवन वैसा ही बनता जाए, वैसा ही बनता जाए। और इसलिए बाबा कहते हैं ये सिर्फ सत्संग नहीं है कि सुनते गए बस, परंतु इसको जीवन में धारण कितना किया। ये अपना रोज का भी हिसाब किताब देखो, चार्ट लिखो, नहीं तो कहां पर ऐसे किया जाता है। कथा सुनते रहते हैं और नींद करते रहते हैं, हाँ? या नींद नहीं करते रहेंगे तो आपस में बात करते रहेंगे, यहां तक कि तेरी मेरी गृहस्थी की चर्चा चलती रहेगी, बाद में भी पूछेंगे गुरु जी ने क्या कहा तो पल्ला झाड़ देंगे, याद भी नहीं होता उनको। जो थोड़ा बहुत याद रहता है उसे करने की ताकत भी नहीं होती जीवन के अंदर। तो बाबा ने हम बच्चों को लक्ष्य ही ऐसा दिया कि हमारी करनी वैसी ही चले, क्योंकि हमें वैसा बनकर दिखाना है। और जब वैसा बनते हैं तो हमारा सब कुछ उसी के अनुसार चलता है, रहना करना आदि। और वैसे भी बाबा ने सारे कर्मों की हमको श्रीमत दी है, सारे कर्मों की। एक भी कर्म ऐसा नहीं है जिसकी बाबा ने हमें समझ ना दी हो, एक भी कर्म ऐसा नहीं है जिसकी समझ ना मिली हो। आपको अगर कोई ध्यान पर आता हो कि ये बात तो बाबा ने कभी कैसे करनी है सुनाई ही नहीं, हमें तो मालूम ही नहीं, हाँ ये काम कैसे करना है, तो बोलो। सुबह आंख खोलने से लेकर रात्रि तक, यहां तक कि रात्रि सोना कैसे है, ये भी बाबा ने ज्ञान दिया है। हर बात का, हर बात का, हमारा उठना कैसे, बैठना कैसे, चलना कैसे, हाँ रहना कैसे, खाना कैसे, पहनना कैसे। पहनना ही हमारा सबसे न्यारा है। देखो सफेद पोशधारी बहुत है दुनिया के अंदर, हाँ नंस भी पहनती है सफेद ड्रेस, लेकिन उसको देखकर और ब्रह्मा कुमारी को देख के साफ अंतर पता चलता है, हाँ, ये तो नन लगती है, ये ब्रह्मा कुमारी नहीं लगती है, क्योंकि उसकी तो यूनिफॉर्म ही अलग है, ड्रेस ही सबसे अलग है, हाँ? और वो ड्रेस भी ईश्वरीय शक्ति ने, ऑल माइटी गॉड ने फिक्स की हुई है। बाबा संदेशियों के द्वारा संदेश दिया करते थे, बाबा श्री बाबा ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा भी डायरेक्शन दिया करते थे, सभी छोटी छोटी बातों का भी। खाना हमारा क्या हो, खाने की विधि हमारी क्या हो, खाना बनाने की विधि क्या हो, यहां तक देखना कैसे है, किस दृष्टि से देखना है, देहभान की दृष्टि ना आए, रूप रंग भेद जाति भाव सबसे बाबा ने हमें ऊपर उठा दिया। और उसी का पुरुषार्थ सभी करते हैं, वो अलग बात है कि सब नंबरवार हैं, हाँ एक जैसे तो कहीं भी नहीं होते, किसी पढ़ाई में भी सभी तो नंबर वन नहीं बनते, टू थ्री भी होते हैं, फिर भी बाबा कहता है बच्चे तुमको तो नंबर वन जाना है, हाँ? तो कोई ऐसा कर्म नहीं, यहां तक कमाओ कैसे वो भी बाबा ने समझाया है, घर कैसे चलाओ, व्यवहार कैसे करो, बच्चे बच्चियों को कैसे पालो, हाँ बाबा सुनाता है अगर बच्ची का विचार इस जीवन को बनाने का नहीं है, दुनिया में जाने का है, तो आप न्यारे हो जाओ, साक्षी होकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करो, रचना आपकी है तो ध्यान भी आपको देना है, जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। संबंधियों से कैसे मिलो, यहां तक कि शुरू में तो हर छोटी छोटी बात भी, इतना ज्ञान मिलने के बाद भी भाई बहने बाबा से पूछा करते थे, या निमित्त बहन से पूछा करते थे, तब तो दादियां सामने होती थी, कि हमारे फलाने संबंधी का ऐसे ऐसे है, हम उसमें सौगात दें, हमारा कर्म का खाता तो नहीं बन जाएगा। इतनी राय करके करते थे, माना श्रीमत लेकर करते थे। और अभी तो बाबा ने सबके ज्ञान के कपाट खोल दिए। इतनी बाबा ने बेहद रीति से हमको ज्ञान के सागर ने सारा स्पष्टीकरण आदि मध्य अंत का दे दिया है। कोई ऐसी बात ही नहीं है जो हमें समझ में ना आए कि मुझे क्या करना चाहिए। हाँ, मैं अगर अपने किसी संस्कार के अधीन हूं, अपने किसी स्वभाव के वश में हूं, तो मेरे को समझ में नहीं आएगा मुझे ये करना या ये नहीं करना। कई बार इसलिए कहते हैं ना, दिल तो कर रही है ये कर लूं, लेकिन नहीं नहीं बाबा की मना है, मैं कैसे कर सकती हूं। हाँ, कभी कोई कोई अपना हाँ सुनाते हैं, चार्ट में भी सुनाते हैं, ये खाना नहीं चाहिए था, खा लिया, फिर बाबा से माफी मांगी। तो देखो करनी सुधरती गई ना। सुधरते सुधरते आज कितने ब्राह्मण, लाखों ब्राह्मण परिवार सहित सारी दुनिया के आगे मिसाल है। और सारी दुनिया आप समझती है कि ये जो ब्रह्मा कुमारी संस्था का सदस्य है, चाहे वो भाई है या बहन है, परिवार का है या सेंटर पे समर्पित है, ये अवश्य ही आदर्शवादी है, अवश्य ही चरित्रवान है, ईमानदार है, भले उन्हें बाकी सारी बातें ना भी पता हो, तो भी इतनी छवि इंप्रेशन सबके दिल में छप चुका है। ये किस आधार से? क्योंकि हमने उस कथनी को करनी में लाया। बाबा ने एक मिसाल मुरली में सुनाता, हंसी करता है बाबा, बच्चे सिर्फ कथनी कथनी नहीं करना। हाँ, एक पंडित था, वो कहता था माताओं को, राम राम कहो, नदी पार करके आ जाओ। सुनी होगी ये सब, सबने। कोई है जिसने नहीं सुनी मिसाल मुरली में? जिसने नहीं सुनी? अच्छा, दो चार है। मुरली में बाबा ने कई बार कही है ये बात कि एक पंडित जी था, उनके वो कथा करता था, तो आसपास की माताएं आती थी सत्संग सुनने, उन्हें अच्छा लगता था, कथा सुनती थी। तो वो गांव से आती थी, तो उनको एक बार बाढ़ आ गई तो पार नहीं कर सकी, तो उसको मालूम नहीं थी ये बात। तो माताएं कई बार कहती थी, हमको ना वो नदी पार करनी पड़ती है। तो पंडित जी बड़े नशे से कहते थे, अरे इसमें क्या बड़ी बात है, राम राम जपो और नदी पार। तो माताएं रात को पक्का कर लिया और वो नदी के पास आकर के राम 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 कहते नदी पार कर लेती थी और कथा में पहुंच जाती थी। तो ऐसे चलता रहा, पंडित जी सत्संग चलाते रहे। फिर एक दिन माताओं ने, क्योंकि उनकी भावना थी पंडित जी के प्रति, आदर था, कहा पंडित जी आप हमारे गांव चलो ना, दर्शन दो, वहां पांव रखो। पंडित जी ने कहा जरूर चलेंगे। अब वो दिन फिक्स हो गया, पंडित जी माताएं उनको लेकर के चल पड़ी। जब रास्ते में नदी आई तो माताएं, पंडित जी ने नदी देखी तो अब पार कैसे करें, कर नाव कहाँ है। तो माताएं उसका मुंह देखने लगी, पंडित जी आपने ही तो कहा था राम राम कहो और नदी पार हो जाएगी। पंडित जी का तो रंग उड़ गया एकदम। अब बाबा क्यों सुनाता होगा ये बात, क्यों सुनाता होगा? हाँ, आप सबने सुनी हुई है फिर भी। हाँ हाँ, कि पंडित जी जैसा नहीं बनना, ये नहीं पंडित जी जैसा बन जाना, पंडित जी जैसा नहीं बनना। दूसरे को तो कराया और उन्होंने इतना निश्चय रखा, बात को इतना सच्चे दिल से मान लिया, तब तो पार कर गई ना सचमुच ही, राम राम हाँ इतना पक्का कर लिया। तो बाबा इसलिए मिसाल सुनाता है। और क्यों सुनाता है? ताकि मेरे बच्चे अपनी कथनी को करनी में बदल सकें, ऐसे नहीं कर न सके, करें करें। हर बात बाबा ने हमें ऐसे इस रीति से दी है कि बच्चे अपने जीवन में धारणा करते जाएं करते जाएं। इसीलिए तो देखो हमारी इस पढ़ाई के ही चार सब्जेक्ट हैं, वो आप सभी को मालूम है ना सभी को, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। अब चार ही क्यों रखे, ज्ञान ही अपने आप में सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, सबसे वैल्यूएबल, हाँ विशेष सब्जेक्ट है, तो ज्ञान ही सुनाते रहें, सुनते रहें, सुनाते रहें, सुनते रहें, वो तो हमारा वैसे भी बहुत जन्मों का संस्कार बना हुआ है सुनने और सुनाने का। भक्ति मार्ग में क्या किया, यही तो किया ना, सुनते रहे, सुनते रहे, सुनाते रहे, सुनाते रहे, और सत वचन महाराज कहते रहे, चाहे वो समझ में आया या नहीं आया, वो तो कोई नई बात नहीं हुई ना, बड़ी बात नहीं हुई ना। लेकिन इसीलिए बाबा ने साथ में सब्जेक्ट रखा योग का, क्योंकि बाबा जानते ज्ञान को समझना इतना कठिन नहीं है, और आजकल तो बिल्कुल ही कठिन नहीं है, एक हफ्ता क्या 3 घंटे में सारा ज्ञान समझ लेते हैं, इतना ज्ञान का विस्तार हो चुका है और इतनी रिफाइननेस आ चुकी है, इतने साधन हमारे बन गए हैं, टीवी पर भी कोर्स कर रहे हैं, मोबाइल पर भी कोर्स कर रहे हैं, छोटे छोटे कार्ड से भी कोर्स कर रहे हैं, कितनी रिफाइन है, और हर प्रश्न का उत्तर भी मिल रहा है साथ ही साथ। हमारे टाइम में तो हम प्रश्न ही नहीं करते थे, हमें प्रश्न करने का ख्याल ही नहीं आता था कभी, क्योंकि ये ख्याल ही नहीं आता था, ये क्यों कहा, अरे भगवान ने कहा, बस कहा, ठीक है हमें करना है, ये कैसे होगा, कभी ख्याल ही नहीं आता था। अब तो कितना रिफाइन हो गया सब कुछ, कितना। लेकिन बाबा जानता है कि उस ज्ञान को जीवन में उतारना है, इन बच्चों को करना है। अब करेंगे कैसे, उसके लिए इनको शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए, समर्थता चाहिए, और वो कहां से आएगी, वही तो नहीं थी, आत्मा कमजोर बन गई जन्म जन्म 63 जन्म विकारों में जाते जाते तो बिल्कुल खाली बन गई। तो बाबा ने योग का सब्जेक्ट दिया, बच्चे सबसे पहले अपनी बुद्धि को मेरे साथ लगाओ, क्योंकि भगवान जानता है शक्ति का साधन विधि एक यही है, और सारी बातें आत्मा को शक्तिशाली नहीं बना सकती, चाहे कितना ही कोई कुछ हासिल कर ले, धन भी शक्ति है, तन भी शक्ति है, पर वो आत्मा की शक्ति नहीं बढ़ा सकते, और करनी होगी आत्मा की शक्ति से, क्योंकि करने वाली कौन है, आत्मा। अब माना मैंने बोल तो दिया कोई भी अच्छी बात, तो मुख ने बोला ना, उसको करने के लिए किसकी समर्थ चाहिए, आत्मा की। और इसीलिए भक्ति में करनी नहीं हो पाई, आत्मा तो कमजोर थी, और ये भी मालूम नहीं था शक्ति कहां से मिलेगी, कोई मंत्र से नहीं मिलेगी, शास्त्रों से नहीं मिलेगी, या संसार की हस्तियों से नहीं मिलेगी, उसका स्रोत तो एक ही श्री बाबा सर्वशक्तिमान है, और कुछ है ही नहीं। तो हमको योग सिखलाया कि बच्चे अपने मन और बुद्धि का योग मेरे साथ रखो, मेरे साथ रखो, और इसके ऊपर कितना कितना बाबा हमें रोज 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 कहता है, कोई दिन नहीं जो बाबा ने हमें यह शिक्षा ना दी हो कि आत्मा समझ एक मुझे याद करो, है कोई दिन। और शुरू से ही बाबा ने सबको बहुत योग में बैठने की, कर्म करते भी योग करने की, नेचुरल योगी बनकर चलो, सब प्रकार की विधि समझाई और कराई। दादियां सुनाती हम सारी सारी रात योग करते थे, हम भी करते थे, लेकिन उनका तो 14 वर्ष वो तपस्या का पाठ चला, का बीच बीच में बाबा, ताकि हमारा योग का पावरफुल वो रहे, तो बाबा प्रोग्राम देता था कि इतने सारे, अब 300 350 है, सारे तो एक साथ काम छोड़ के नहीं बैठ सकते हैं, भोजन भी चाहिए और कुछ नहीं तो सफाई भी चाहिए, बाहर की सेवाएं तो नहीं थी, तो बाबा ग्रुप्स बना देता था 50-50 के, 25-25 के, कि अब ये 25 बहनें जो हैं 3 दिन के लिए तपस्या में रहेंगी और कुछ नहीं करेंगी, सिर्फ बाबा की याद बस, और खाने को भी सिर्फ फल मिलेगा ताकि अंदर से अलर्टनेस रहे, एक्टिव रहे, नींद को योग न समझ लें। अभी तो नींद कर रहे होते हैं, कहते हैं योग का टाइम पूरा हो गया, कितना मजा आ गया, देखो आया ना मजा, नींद भी कर ली, योग का नाम भी लिखा गया, बाबा ने भी देख लिया ये बैठी है, पर सचमुच क्या मेरी आत्मा में शक्ति भरी, उस नींद के सुख को शांति थोड़ा समझ लेना है, प्रैक्टिकल चाहिए ना। तब बाबा कहते चेक करो मेरा मन बुद्धि कहाँ था, और इसीलिए आंख खोलकर योग सिखलाया, कहीं दुनिया में ऐसे है, क्योंकि कनेक्शन बाबा ने हमारी आत्मा का किया अपने साथ, परमात्मा के साथ, जिसे योग कहा, तब हमारी करनी वैसी होती जाएगी। इसीलिए देखो हम ब्राह्मण अपने जीवन में उन धारणाओं को सहज अपना लेते हैं जिसे दुनिया वाले बड़ा मुश्किल समझते हैं, क्योंकि आपने शांति के सागर से कनेक्शन रखा तो आपके जीवन में आत्मा में शांति आती गई। अब शांति भरती गई भरती गई तो क्रोध, क्रोध ने क्या किया फिर, चला गया चला गया। इतनी शांति आ गई कि क्रोध करने की इच्छा ही नहीं, जरूरत ही नहीं, कोई कराए भी तो सोचते हैं अरे क्या, नेचर बन गई शांत रहने की, शांत बोलने की, सबको उसी रूप में देखने की, और उसी से कितने गुण आते गए जीवन में, एक एक गुण से बाबा के हमारे जीवन में कई कई गुण आते जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे बुद्धि योग मेरे साथ रखो, और बाबा ने स्वयं भी वो बहुत डीप पुरुषार्थ किया, एक एक को बाबा ने आत्मिक दृष्टि से देखा, सिर्फ ज्ञान ही नहीं दिया कि तुम आत्मा हो, बाबा के संबंधी बाबा के साथ रहते थे, युगल भी और बहू भी बेटा भी, बाबा सामने देखता था बहू आ रही है ब्रिजिंद्रा दादी, हाँ तो बाबा सोचता था नहीं ये आत्मा है, ये राधे नहीं, राधे उनका नाम, ये राधे नहीं ये आत्मा है, ये आत्मा है, तो उस दैहिक भान को मिटाया। जसोदा उनकी युगल सामने आई, भोजन लगाया, बाबा सोचता था ये आत्मा है, ये जसोदा नहीं, मेरी युगल नहीं, ये आत्मा है, श्री बाबा की बच्ची है। इतना बाबा ने पुरुषार्थ किया, ऐसी करनी बाबा की रही, जो कथा कहा वो किया। इसीलिए बाबा की जीवन इतनी ऊंची महान बन गई, संपूर्ण बन गए बाबा, और सबको भी सिखाया कि इसी आत्मिक भाव से सबको देखो, और तभी तो देखो बाबा ने हम सभी को जो शिक्षा दी, जाति भेद भाषा भेद रंग भेद धर्म भेद सबसे ऊपर कर दिया, सबसे ऊपर कर दिया। आज दुनिया में ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए ईश्वरीय परिवार सबके आगे प्रत्यक्ष होता जा रहा है। सिर्फ ये प्रत्यक्ष करना है कि ये कराने वाला शिव बाबा है, और वो काम भी बाबा कहते आप बच्चों का है, और वो आपकी रहनी से ही होगा। जैसा हम जीवन जी रहे हैं हमारा रहना करना है, हमारी जीवन की धारणाएं हैं, उनसे ही होगा। और वो होना ही है, हो भी रहा है और भी होना है, एक दिन वो भी आ जाएगा अभी ये तो समझते हैं इनके पीछे कोई ताकत है, लेकिन वो ताकत कौन सी है इसका स्पष्टीकरण उनको नहीं है। और वही काम बाबा हमें रोज देता है। तो करनी हमारी वैसी बनती जाए। तो बाबा ने तीसरा सब्जेक्ट धारणा का दिया। धारणा माना ही प्रैक्टिकल जीवन, क्योंकि योग से शक्ति आ जाती है। तो जो बात हम मुरली में सुनते हैं, पढ़ते हैं, औरों को सुनाते हैं, उसे हम जीवन में धारण करते जाते हैं और कर सकते हैं और कर रहे हो, कर रहे हो तब तो यहां तक पहुंचे ना। हाँ, भट्टी की लगन भी क्यों है, अंदर ये आत्मा को महसूसता है ना कि मेरा पुरुषार्थ तीव्र होना चाहिए, मैं ढीला ढाला पुरुषार्थी नहीं रहना चाहिए। बाबा हमारी आत्मा को भरपूर कर रहा है और मैं खाली रह जाऊं, मुझे भी स्वयं को वैसा बनाना है। इस लगन है ना, ये अंदर है ना, ये लगन बोलो। तो जीवन की वैल्यू धारणा से होती है। जितना हमारा जीवन उस स्वरूप में आता है, धारणा मूर्त बनता है, उतना हमारा जीवन महान बनता है। तब हम त्याग सहज कर सकते हैं, नहीं तो त्याग करना भी कष्टदायी लगे। परंतु अब हम ब्राह्मणों को तो त्याग करना बहुत खुशी का, भाग्य का महसूसता दिलाता है ना। कोई कहता है आप बड़ा त्याग करते हो भाई, तो आप क्या कहते हो? हाँ करते तो हैं, बड़ा कष्ट होता है, ऐसे कहते हो? क्या कहते हो है? अरे भाई ये तुम्हारा भाग्य है, भाग्य, ऐसे ही बोलते हो ना? क्या बोलते हो, मुझे नहीं पता क्या बोलते हो है? क्या क्या बोलते हैं? क्योंकि हमको इतना कुछ भगवान से मिल रहा है, इतनी प्राप्तियां हो रही है, तो त्याग तो उसके आगे कुछ भी नहीं। अभी कोई आपको कहे ये सीढ़ी नीचे उतरो और नीचे आपको गिफ्ट मिलने वाली है, तो सीढ़ी उतरना कष्टदायी लगेगा? वो बूढ़ा लंगड़ा भी धीरे धीरे डंडा लेके चला जाएगा, है ना? सच्ची बात है ये, और राइट बात भी है, रॉन्ग थोड़ा है ये, राइट है। भाई जो प्राप्ति हो रही है, जो अधिकार मिल रहा है, उससे वंचित क्यों रहा जाए, यही तो समझदारी है। तो भगवान हमको दे रहा है, ये है ही हमारी प्राप्ति का जीवन, प्राप्तियों भरा। और सभी प्राप्तियां जो अंतरात्मा को चाहिए, अंतरात्मा को कोई ये स्थूल चीजों की जरूरत वास्तव में शरीर को चलाने की है, अंदर को नहीं है। अब शरीर तो आप देख ही रहे हैं विनाशी है, अंतरात्मा अगर भरपूर नहीं हुई तो कितनी भी चीजें हो उनका कोई महत्व नहीं रहता। आज इसीलिए दुनिया में खूब माल भर रहे हैं लेकिन अंदर खाली है, बैंक भर रहे हैं, दुकान भर रहे हैं, मकान भर रहे हैं, जेब भर रहे हैं। हाँ, माताएं पर्स भर के रखती हैं, छिपा के भी गठड़ी रखती हैं। अंतरात्मा को भरा हमने, तो यही बाबा के बच्चों ने किया ना। भगवान हमको जो प्राप्ति करा रहा है वो कौन सी करा रहा है? हमारी आत्मा को भरपूर कर रहा है, सुख से, शांति से। हाँ, प्यार का सागर है, आनंद का सागर है, शक्तियों का भंडार है, उससे। लोग क्यों दुखी हैं? सब कुछ होते हुए भी दुखी हैं। कमाल तो ये है आश्चर्य लगता है, भाई तुम्हारे पास तो सब कुछ है फिर भी दुखी है, क्योंकि अंदर खाली है, आत्मा खाली है, खाली। और हम बाबा के बच्चे हम क्या कहते, दो रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, क्योंकि शरीर को तो दो ही रोटी चाहिए, चलो चार रोटी खा लो कोई हर्जा नहीं, पर आत्मा को तो हम भर रहे हैं ना अंदर से, सभी गुणों से, सभी शक्तियों से, इसलिए मौज में है। कहावत है ना, कभी घी गना कभी मुट्ठी चना कभी वो भी मना, हम तीनों में राजी हैं, है ना, तीनों में राजी है। बाबा ने भी वो किया, शुरू में बाबा जब समर्पित हुआ, बाबा का जो धन था वो सेवा में लग गया, बाबा ने श्री बाबा की श्रीमत से बहनों के आगे कमेटी बना के समर्पित कर दिया और मम्मा को जिम्मेदार बनाया, उसी से ही सारा खर्चा चला। तो बाबा ने सभी को खूब माल खिलाया, ड्राई फ्रूट्स भी खिलाए, सागर किनारे पिकनिक कराई, बढ़िया बढ़िया ब्रह्मा भोजन बनाए, सतयुगी दुनिया के बाबा पकवान याद कराता था, संदेशी को बेचता था, जाओ वतन में देख के आओ, और कितनी चीजें बाबा बनवाता था, सजाता भी था, तुम महारानी बन के बैठो फोटो खींचो इसका, देखा ना दादियों के कई। फिर जब वो खजाना खाली हो गया, एक दिन तो खत्म होना ही था, क्योंकि बाहर से तो कहीं से लिया नहीं था, सेवाएं तो चालू हुई नहीं थी, सहयोगी तो कोई बने नहीं थे इतने, तो वो टाइम भी आया, तो बाबा ने कहा हाँ भंडारा खाली हो गया है, वो भी कहानी है, वो तो सुनाने में समय चला जाएगा। बाबा ने कहा 15 दिन आधी बाजरे की रोटी खानी है बस, और लस्सी का गिलास, जिसकी तबीयत नहीं मानती थी उसने भी वही खाया। निर्मल शांता दादी को दम्मा रहता था, तब भी उसने भी वही हाँ बाजरे की रोटी खाई। लेकिन क्यों आसान लगा कारण? क्योंकि ईश्वरीय प्राप्तियों का जीवन अनुभव किया, कि भगवान जो प्यार से दे रहा है, कोई आपको 36 व्यंजन खिलाए, दुनिया में पार्टियों में जाते हैं साथ में एक कड़वा शब्द भी बोल देते हैं, या शब्द ना बोले अवॉइड भी करते हैं, कई तो आके डिस्टर्ब होके आते हैं, कहते हैं अपनी फोटो खींच रहे मस्त है, हम आए भी इनको पता भी नहीं चल रहा, हो रहा है ना दुनिया में। और भगवान ने तो एक एक को प्यार से पालना दी, देखो एक एक को अभी भी देता है, हाँ बुलाता है अच्छे बच्चे टोली खाओ, हाँ एक एक को बहने दृष्टि देती है, टोली देती है, तो क्या खींचता है वो प्यार, वो आकर्षण, रूहानी रूहानियत भरी पालना, ऐसी हमारी जीवन बाबा ने बना दी, ये हमारी रहनी है कि प्रेम से चलो, मिलजुल कर चलो, असली ब्रदरहुड हमने किया, भगवान ने हमसे कराया, करा रहा है, देखो हमारा लाइफस्टाइल ही यही है। आंख खुलते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं, हाँ सोने से पहले भी बाबा को गुड नाइट करते हैं, दिन में कितनी बार बाबा को याद करते हैं, भोजन हम बाबा की याद के बिना खाएंगे नहीं, कितनी भी जल्दी होती है तो मैंने देखा है कई बार हंसी भी आती है, खड़े खड़े ही कहेंगे अच्छा बाबा बस मैं खा रहा हूँ, बाबा बाबा आप भी खा लेना मैं भी खा रहा हूँ, भाग रहे ऑफिस के लिए, कितना अच्छा है। देखो ये हमारा रहनी है ना, रहनी की बाबा ने कितनी प्योर कर दी, कितनी रॉयल कर दी, सिंप्लिसिटी एंड रॉयलिटी दोनों हमारी पर्सनैलिटी से झलकता है। हम कहीं जाते हैं ना, कई बार कई वीआईपीज हमसे पूछते हैं जो ज्यादा क्लोज होते हैं ना, और कोई कोई फीमेल्स भी होती हैं मिनिस्टर, कहती है कपड़े तो हम भी पहनते हैं, इतने सफेद आपके कैसे हो जाते हैं? मैंने कहा डिटर्जेंट तो बाजार से ही आता है, वो हम नहीं बनाते, हंसी हंसी में। हाँ अब मैं उसको क्या बताऊं, ये सफेदी सिर्फ कपड़े की नहीं है, बाबा हमारी आत्मा को सफेद कर रहा है ना, उसका वाइब्रेशन है ये, प्योरिटी का, सिंप्लिसिटी का। होते भी हैं सफेद, नो डाउट, क्योंकि भगवान ने हमें स्वच्छता का जीवन दिया है। इतनी स्वच्छता कहीं, हाँ, तन की भी और मन की भी कहीं इस विधि से नहीं है। ऐसी हमारी रहनी है। जो हमारा सोच है, विचार है, उसको ही हमने इतना प्योर कर लिया, पॉजिटिव कर लिया, कि नेगेटिव सोचना ही नहीं है। बाबा ने कितना शुभ भावना, शुभ कामना का हम बच्चों के अंदर कूट कूट के भरा है। बच्चे सदा शुभ सोचो, सदा शुभ सोचो। कोई कितना भी आपका नुकसान करे, तब भी आप शुभ सोचो। आप बदले की भावना नहीं रखना। और उसका ज्ञान भी दे दिया। फिर हम भी देखो इतने धीरे धीरे पक्के होते जा रहे हैं। अच्छा भाई, ये आत्मा मुझको सुख नहीं देती है, ड्रामा है ना, पक्का है ना। यहां जाके उसको कहते क्यों ऐसे करता है तू, कहेंगे तो भी अंदर मन खाएगा कि फालतू कहा। होता है ऐसे, है ना। तो बाबा ने तो हमें हर विधि बता दी है। हमारा रहना करना ही ऐसा कर दिया है कि हमें दूसरी उल्टी बातें बुद्धि में आएंगी ही नहीं, आएंगी ही नहीं। हमें जरूरत ही नहीं लगती उसकी। और ये पक्का है, हर पल बाबा हमारे साथ है। गीत भी गाते हो, ईश्वर मेरे साथ है, डरने की क्या बात है। तो आप तो किसी से भी नहीं डरते। डरते हो क्या किसी से? किसी से भी नहीं डरते। कोई बड़ी हस्ती आ जाए, कुछ भी हो जाए, क्यों? क्योंकि आपने साथ ही किसका पकड़ा है? सर्वशक्तिमान का। ये भी पक्का है, मेरा कुछ बिगड़ नहीं सकता। हर बात में कल्याण है, बुद्धि में हमेशा ये सेट है। कल्याणकारी बाप की संतान हूं, मेरा अकल्याण नहीं हो सकता। अकल्याण हो भी रहा है, दिख रहा है, दृश्य अच्छा नहीं है, फिर भी हमारी बुद्धि कहती है नहीं, इसमें भी मेरा कोई कल्याण है। ये अनुभव सदा रहना चाहिए, ऐसी हमारी रहनी हो तो निश्चिंतता रहे जीवन के अंदर, परेशानी नहीं। कभी भी परेशानी वाला चेहरा नहीं रखना। परेशानियां आती हैं। कोई कोई कह देते बहन जी आपको क्या पता मेरे आगे कैसी परेशानियां हैं। अच्छा, हमको नहीं पता। आपको पता है कि हमारे आगे कैसी परेशानियां हैं? किसी को नहीं पता। किसी का पता है भी, लेकिन कुछ नहीं पता, क्योंकि पता करने की जरूरत ही नहीं है। परेशानियां सुन के करेंगे क्या? हल तो बाबा ने पहले ही दे दिया हमको, हर बात का हल दे दिया है। हमने इसलिए पहले ही सुनाया ना, कौन सा कर्म ऐसा जिसका ज्ञान बाबा ने नहीं दिया। तो गुलजार दादी कहा करती थी, अच्छा आप कहीं किसी बात के अंदर कंफ्यूज हो जाते हो, बिजनेस में ऐसी बातें आती हैं, आज का कंपटीशन का संसार है, नौकरी पेशे में, घर गृहस्थी में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। ये थोड़ा नहीं आती है ही अंतिम समय ना, यहाँ ही तो सब कुछ चुकतू होना है। कितनी माताएं सुनाती हैं, भाई भाई का हिस्सा मार के ले जाता है, चलो आपके हिस्से में नहीं आया, आता तो आप क्या कर लेते, कितनी महान आत्मा बन जाते। आपको तो भगवान सत्युग की बादशाही दे रहा है, उसके आगे क्या बड़ी बात है। तो दादी बताती थी, उस समय आप, उसका आंसर ये है, आप ब्रह्मा बाबा को सामने रखो। कि जो आज परेशानी मेरे आगे है, यही ब्रह्मा बाबा के आगे आई होगी या आती, तो बाबा क्या करता, उत्तर आपको मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। बुद्धि आपकी अंदर से ठनकेगी कि सचमुच बाबा तो इसका हल ऐसा करता, तो बस आप निश्चय रखो, खुद पक्के रहो, वैसा करने की हिम्मत करो और मदद भगवान की मिलेगी ही मिलेगी, श्योरिटी है, ना मिले ये हो ही नहीं सकता, सिर्फ अनुभव करने की बात है। अच्छा बाबा हमारी मदद नहीं करेगा तो किसकी करेगा बताओ, जरूर है सबसे पहले तो हमारी करेगा ना। लौकिक में भी देखो, दो चार बच्चे हो, माँ बाप की दृष्टि किस बच्चे पर ज्यादा रहती है, जो कहना मानता है, आज्ञाकारी है, तो सारी दुनिया में से तो आप ही है ना वो जिन्होंने भगवान का कहना माना। बाबा कहता है आप मेरी भुजाएं हो, ब्रह्मा को इसीलिए शस्त्र भुजाएं दिखाई हैं। भगवान ने आकर के कहा योगी जीवन बनाओ, तो आपने बनाया ना, थे तो करोड़ों लोग, आज भी हैं, कितनों को आप कितनी बार सौ सौ बार कहते हो तो भी नहीं बनाते, टालते ही रहते हैं। आप तो तुरंत बन गए योगी, तुरंत जीवन की धारणाएं अपनानी शुरू कर दी। हाँ जी या ना जी, सोच में पड़ गए थे, मैंने कहा पूछूं तो सही। वो तो प्रमाण है आपका जीवन ही, यहाँ प्रेजेंस ही प्रमाण है कि जीवन वैसा बन रहा है, बन गया। तो सहज हो जाता है, कठिन नहीं लगता, सिर्फ बाबा की मदद लेने के पात्र बनो। तो बाबा मदद ना करे ये हो ही नहीं सकता। तो हमारी तो जीवन रहनी ही वैसी है। आजकल देखो कई बार माँ बाप सुनाते हैं, हम बच्चों को कहते हैं ऐसे नहीं ऐसे करो, या आजकल तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, वो क्या सुनाई जाए। माँ बाप सामने खड़ा है, वो बच्चा फोन में इतना बिजी है, उसको पता ही नहीं मेरी माँ सामने खड़ी है खाने की थाली लेके। फिर कुछ कहते हैं लाइफस्टाइल ही है ये आजकल, लाइफस्टाइल ट्रेंड ये है, ऐसी ऐसी बातें। और हम ब्राह्मणों का देखो कितना रॉयल लाइफस्टाइल है, कितना ऊंचा, कि सुख दो और सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो, लो भी नहीं। देखो लोगों को तो, अच्छे अच्छे लोगों को, बड़े बड़े लोगों को ये नहीं पता, वो कहते हैं अरे दूसरे का दुख ले लो ना तो फिर तुम दुखी हो जाओगे, भाई लोगे जो लोगे वही तो होगा ना, फिर तुम खुद दुखी तो दूसरे को सुख कैसे दोगे, इतनी भी गहराई नहीं पता। और भगवान ने हमको पहले दिन ये बातें सारी समझा दी, देखो तो हमारा लाइफ कैसा बन गया, दुखी नहीं होना, कोई करे तो भी नहीं होना, क्यों होने का, आप तो सुख के सागर की संतान हो। और वो सारी बातें सुखी होने की ही सुना रहा है हमको, दुखी होने की नहीं। दुख की दुनिया से ही हमें निकाल दिया, दुख धाम से ही निकाल दिया। अब आप कहोगे मैं दुख धाम में रहता हूं, कलयुग में रहता हूं, कोई ब्राह्मण नहीं बोलता, बोलते हैं हम तो संगम युगी है, ब्राह्मण है सर्वोत्तम कुल, श्रेष्ठ ब्राह्मण है, ऊंचे हैं, और भगवान का प्यार सुख सब कुछ हमको मिल रहा है, आनंद का जीवन है। बस इच्छाएं नहीं रखो, ऐसी रहनी हो हमारी, इच्छाएं रख के होगा भी क्या, जब हम है ही खुश। तो जो खुश होता है लौकिक में भी, जो संतान खुश होती है माँ बाप से कभी मांगता नहीं है, कभी मांगता नहीं है, क्योंकि वो खुश है और उसको ये निश्चय है कि माँ बाप मेरी पालना कर रहे हैं तो मुझे देंगे ही ना जो चाहिए, और जितना देंगे उसमें ही मेरी भलाई है ना। तो इच्छाओं से भी ऊपर हो गए। तो जो इच्छाओं से ऊपर है वो बंधन मुक्त है, ऐसा हमारा ये जीवन है, बंधन मुक्त रहनी है एकदम। तो तीनों में कथनी भी हमारी, करनी भी हमारी, रहनी भी हमारी, समान होती जाएगी ना, होती जा रही है ना समान। और अंदर से भी देखो यही अंतरात्मा महसूस करती है कि जो मैं कर नहीं रही वो मैं बोलूं क्यों, और जो बोलना ठीक नहीं वो मैं सोचूं भी क्यों। कई बार मैं चेक करती हूं जो संकल्प आया है क्या ये सबको सुनाए सबको पसंद आएगा, तो फिर मैंने सोचा क्यों, सोचूं भी नहीं, जब पसंद ही नहीं सोचूं ही क्यों। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को देखो योग युक्त बनाया है, युक्ति युक्त बनाया है कि जब सोचेंगे ही नहीं तो मुख बोलेगा ही नहीं, मुख बोलेगा ही नहीं तो वैसा कर्म उल्टा होगा ही नहीं, क्यों होगा। तो अपने आप ही हम तो सेफ होते जा रहे हैं, ये भी तो हमारा कितना खाता है सुख का, भाग्य का, पुण्य कर्मों का, और अब और पुण्य कर्म हमारे जमा होते जा रहे हैं। तो हमारा रहना माना ही सब कुछ, सब कुछ, सोचना, देखना, उठना, बोलना, सब कुछ वैसा है, सब कुछ। एक बहुत पुरानी घटना घटी थी, बाबा मुरलियों में कहते हैं ना कि सिविल आई हो, क्रिमिनल आई नहीं हो, कहीं भी दृष्टि नहीं जाए, देह भान की दृष्टि ना हो। तो एक भाई था, वो माली था, माली का काम करता था। तो माली बगीचे में तो लोग घूमने आते हैं, फ्रेंड्स भी आते हैं, परिवार भी आते हैं, तो वो कभी कभी बैठा होता था, काम उसका हो गया, फ्री शाम का टाइम है, तो कोई कोई कपल आए, सज धज कर आए, कोई दोस्त आए, फ्रेंड्स आए, तो थोड़ी ना उसकी दृष्टि जाती थी बेचारे की। अब एकदम तो 100% पवित्र पहले ही दिन तो मनसा नहीं बन जाती ना, 63 जन्मों का संस्कार होता है। तो बाबा नहीं कई बार मुरलियों में कहता है, हाँ सिविल आई, मैं तुम्हारी आंख चेंज कर देता हूँ, दृष्टि बदल देता हूँ। उसको अंदर ना बड़ी आत्मग्लानी महसूस हुई कि मैं ऐसे गंदी दृष्टि से क्यों देखता हूँ, बाबा की तो मना है, मुझे नहीं देखना ऐसा। तो इतनी उसको अंदर बेचारे को फीलिंग आ गई अपने प्रति, उसने अपनी आंख ही फोड़ दी। अब आंख से खून निकलने लगा, घर गया, घर वाले रोने चिल्लाने लगे, ये क्या किया तुमने। तो घर वाले सारे तो बीके नहीं थे, वो आश्रम पहुंच गए। ये सच्ची घटना है लेकिन बहुत पुरानी है। तो बहनों ने कहा, हमने तो कभी कहा ही नहीं ऐसे, भगवान ने भी कभी कहा ही नहीं ऐसे, आप देख लो कौन सी मुरली में ऐसे है, और यहां किसने कभी आज तक आंख निकाली है। भगवान ने तो कहा अपना देखने का जरिया नजर बदल दो, नजरिया बदलो, आंखें नहीं निकाल के बदल दो। आंखें तो सर्जन चेंज करेगा ना, वैसे भी वो तब करेगा जब बिगड़ी हुई होगी, आंख तो ठीक ठाक है इसकी, आंख थोड़ा निकालनी है। देखना नहीं है ऐसा, जो ना देखने जैसा है वो देखना नहीं है, बस और क्या। तो हमारी रहनी कितनी ऊंची हो गई ना, जब देखना ही नहीं है गड़बड़, देखो ही नहीं, कोई क्या कर रहा है क्यों देखते हो। आज संसार की ज्यादा हालत इसीलिए खराब है, देखता ही रहेगा इसने क्या पहना है, इसने क्या खाया है, ये कहां से घूम के आ रहे हैं, घर में क्या सामान आया है, अरे घर में किसी के एसी लग गया तो पड़ोसी के घर में लड़ाई चल रही है, क्या है देखो। बाबा ने हमें कितना कितना प्योर ऊंचा उठाया। बाबा कहते हैं बच्चे आपको क्या करना है, देखकर मिलता है कुछ, कोई क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, कहाँ जा रहा है, देखो ही नहीं ना। जिससे मनसा पे असर आए वो क्यों देखो, देखो तो अच्छी बात देखो, उसका गुण देखो, उसकी आत्मा चमकती हुई देखो बस। तो जब देखा ही, बाबा मुरली में कई बार कहते ना आंखें धोखा देती हैं, तो सब कुछ ठीक है। सोचना भी अच्छा, देखना भी, बोलना भी, सुनना भी, चलना फिरना रहना, तो हमारी रहनी कितनी ऊंची हो गई। तो कथनी करनी रहनी जिसकी ऐसी है, हाँ फिर तो उसका जीवन कितना ऊंचा श्रेष्ठ, जो लक्ष्य दिया बाबा ने उसके समीप पहुंचते जा रहे हैं, और एक दिन बनकर तैयार हो बाबा के साथ ही। हाँ बाबा कहता है अपनी पलकों पर बिठाकर मैं अपने साथ आप बच्चों को ले चलूंगा, इतना प्यार है प्यारे बाबा का हम बच्चों के साथ। ओम शांति।
ओम शांति। प्यारे बाप दादा के श्रीमत के अनुसार हमारे कथनी करनी और रहने को कैसे समान बनाए, इसीलिए आदरणीय दीदी जी प्यारे ब्रह्मा बाबा के जीवन के अनुभव के साथ साथ अपने प्रैक्टिकल लाइफ के वैल्यूबल जीवन के अनुभव हम सभी को सुना करके हमारे में शक्ति भर दिए, उमंग उछा भर दिए, हम सभी को स्वस्थ प्रेरणा दिए। इसीलिए सभी नवरंगपुर सब जोन के सभी भाई बहनों की ओर से आदरणीय दीदी जी को बहुत बहुत थैंक्स है, शुक्रिया है। सभी एक हाथ हिला करके दीदी जी को शुक्रिया अदा करेंगे, और हम सभी यही दृढ़ संकल्प रखेंगे। दीदी जी का क्लास बहुत पावरफुल था, प्रैक्टिकल जीवन में रहने कैसे कैसे रहनी है, कैसे करनी है, तो वास्तव में हम सभी जरूर अपने जीवन में आत्मसात करने का लक्ष्य रखेंगे।